بسم الله الرحمن الرحيم. قال تو پوچھا جبرائیل نے میکائیل کو, ومن تبہو, کس نے ان کے اوپر سحر کیا ہے؟ قال, آگے والے کو پیچھے والے یعنی میکائیل نے جواب دیا, لبید ابن الاعصم, لبید ابن اعصم یہودی نے جادو کیا. قال فی ما زا, پوچھا کس چیز کے اندر جادو کیا ہے؟ قال فی مشت و مشاقتن و جف طلعت زکرن, مشت سر کے اندر کنگھی کرنے کا آلہ, برش کنگھی مشت, دوسرا لفظ ہے مشاقا, بعض نسخوں کے اندر ہے موشا تو اور تا, اس کے معنی آتے ہیں کنگھی کرتے وقت پر جھڑے ہوئے بال. جس وقت پر کنگھی کی جاتی ہے اس وقت جو بال جھڑ جاوے وہ, ایسے ایک ترجمہ یہ کرتے ہیں کتان کا کپڑا, سوتی کپڑا. وجفی طلعتی زکرین, نر کھجور کے پھول کے ٹکڑے میں, نر کھجور کے پھول کے ٹکڑے میں ہوشے کے غلاف میں رکھا گیا ہو. جف کھجور کے کھوشے کی ٹھیلی, جف کھجور کے کھوشے کی ٹھیلی, تو نر کھجور کے پھول کے ٹکڑے میں اور کھجور کے کھوشے کے غلاف کے اندر جو بن کر کے رکھا گیا ہو. دراصل جادو کرنے والے نے تدبیر یہ کی تھی کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کنگھے مبارک سے نکلنے والے بال, کنگھے کے نکلے ہوئے دندانے, وہ ایک یہودی لڑکے کی معرفت منگوا لیے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا جاتا تھا. پھر اس کے اندر جادو کا منتر پڑا, 11 گرہیں لگائی اور نر کھجور کے پھول کے ٹکڑے, کھجور کا کھوشہ اور غلاف یہ لے کر کے اس میں یہ بال اور کنگھی کے دندانے سب پیک کر کے رکھے. موم کا ایک پتلا بنایا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل کا, اور موم کے اس پتلے کے اندر سوئی گھونپی, باریک باریک سوئی لگائی, اور تانت میں 11 گرہے لگائے. بیر زروان یا یہ کہ بیر زی اروان, دونوں طرح کے نام اس کے رائج ہے, بیر زروان یا بیر زی اروان. یہ یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا بنو زریق, उनकी बाड़ी के अंदर ये कुआं था। उस कुएं के अंदर ले जाकर ये सब चीजें दबा दी, यानी खजूर के खोशे के गिलाफ में जो बाल गिरहें लगाए गए, जो दंदाने रखे गए, मोम का जो पुतला बनाया गया, सुई लगाया हुआ, ये सब चीजें ये बीरे जरवान में ले जा करके एक बड़े पत्थर के नीचे उसको दबा दिया। इस कुएं के अंदर गंदा पानी रहता था, यहूदियों का कुआं मेहंदी का जो रंग हो यानी लाल लाल जैसा, ये इस कुएं के अंदर पानी रहता था। उस जमाने के अंदर जादूगर लोग जादू करने के वास्ते नर खजूर का फूल चुनते थे। खजूर में भी नर मादा होता है, तो नर खजूर का फूल चुनता है और उस फूल के टुकड़े करते हैं। टुकड़े करने के बाद मोनस खजूर का जो फूल होता है, उस फूल के अंदर नर खजूर के फूल के टुकड़े रख दिए जाते हैं, तो मोनस खजूर का फूल सलामत, उसको तोड़ते नहीं। और नर खजूर के फूल से जो चुना फूल, उसके टुकड़े करेंगे और टुकड़े करके मोनस खजूर के फूल में उसको लगा देंगे। जादूगर ने बिल्कुल ऐसा किया था कि नर खजूर के फूल का टुकड़ा लिया, कंघी और गिरे हुए बाल खजूर के खोशे की थैली में रखे, उस पर जादू का मंत्र पड़ा, बर्तन में रख कर के बीरे जरवान में रख दिया। ये गैर मुस्तामल कुआं था, यानी उसका पानी इस्तेमाल नहीं किया जाता था, चूंकि गंदा पानी था। ये सब चीजें जादू की हुई रख कर उसके ऊपर एक बड़ा भारी पत्थर रखवा दिया जादूगर ने। ये सारी चीजें ख्वाब में जिब्राइल और मिकाइल के सवाल के जरिए हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतलाई गई। चंद सहाबा को साथ लेकर बाद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कुएं पर तशरीफ ले गए। उस कुएं का पानी मेहंदी के लाल रंग जैसा था। कुएं के करीब में एक खजूर का दरख्त भी था, उसकी जो शाखें थी वो सांप नुमा बड़ी खतरनाक मालूम होती थी। करीब में जो खजूर का दरख्त था उसकी शाखें कुछ अजीब थी कि सांप के सर जैसी खतरनाक मालूम होती थी। सांप का सर आमतन जिस्म से पतला होता है, यानी सांप अगर मोटा है तो सर आमतन पतला होता है और खौफनाक होता है। वहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। मुअव्वज़तैन नाजिल हुई, दोनों सूरतें मिला करके मजमूई 11 आयतें होती है। जादूगर ने जो बाल में जादू की गिरह लगाई थी, तांत में जो गिरह लगाई थी, वो भी मजमूई तौर पर 11 थी। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक आयत को तिलावत फरमाते गए और वो गिरहें खुद ब खुद खुलती चली गई, और जैसे गिरे हैं खुलती चली गई। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो बंदिश थी, यानी ऐसा महसूस होता था कि जिस्मे अतहर ज़हन अकदस कुछ बंदिश के अंदर है, तो जैसे आपने आयात तिलावत फरमाई गिरहें मुअत्तल होती गई, और जिस्म और ज़हन के ऊपर जो एक बंदिश की कैफियत मालूम होती थी वो कैफियत हल्की होती हुई चली गई। यहाँ तक कि जब मुआवज़तैन की तिलावत मुकम्मल हो गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा महसूस हुआ कि काफ़ी वक्त से मैं किसी चीज़ में जकड़ा हुआ था, बंधा हुआ था, और अब मैं खुल गया, मेरी तबीयत हल्की हो गई। ऐसा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस फरमाया। बाज़ रिवायत से पता चलता है कि ये तिलावत जिब्राइल अमीन ने की, या ये कि खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिलावत फरमाई। जब जादू का असर मुअव्वज़तैन की तिलावत की बरकत से मुअत्तल हो गया, बेकार हो गया, तो फिर अंदर से जो चीज़ें निकलवानी थी उसको निकालने की ज़हमत गवारा नहीं की गई। और बाज़ आसार से पता चलता है कि उसको निकाला गया और मुअत्तल किया गया। बाज़ आसार ये बतलाते हैं कि जब मुअव्वज़तैन के पढ़ने से जादू का असर मुअत्तल हो गया तो उसको निकालने की ज़रूरत महसूस नहीं की गई। فخرج إليها النبي صلى الله عليه وسلم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں کی طرف تشریف لے گئے، پھر واپس تشریف لائے۔ آپ نے اس کنویں کے پاس سے آ کر حضرت عائشہ کو فرمایا نخلها کأنها رؤوس الشیاطین، وہاں جو کھجور کا درخت تھا گویا کہ وہ شیطان کے سر ہے، گویا کہ وہ شیطان کے سر ہے۔ یہ قبیح المنظر ہونے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دی کہ بیر زروان کے قریب کے اندر ایک کھجور کا درخت ہے، اور اس کھجور کے درخت کی شاخیں سانپ کے سر جیسی خطرناک بدنما معلوم ہو رہی تھی، اور یہ خطرناکی اور بدنما ہونے میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تشبیہ دی کہ انہا رؤوس الشیاطین، بدنمائی میں خطرناکی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دی۔ جادو اتنا بھاری کیا ہوا تھا کہ کنویں کے پانی پر تو اثر محسوس ہو ہی رہا تھا، لیکن وہ کھجور کے درخت پر بھی اس کا اثر معلوم ہو رہا تھا۔ اتنا بھاری لبید نے اور اس کی لڑکیوں نے جادو کیا تھا، اس کی لڑکیاں سب ڈاکڑیاں تھیں اور جو ہے جادو کرنے میں ماہرہ تھے۔ انہوں نے زوردار منتر پڑھ کے اس میں پھونکے ماری تھی، اسی لیے مُعَوَّذَتَيْن میں آیا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدَ، گرہوں میں پھونک مارنے والی ڈاکڑیوں کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں، حفاظت چاہتا ہوں۔ یہ تھی اس کی عورتیں، لڑکیاں، جو دم کر کے انہوں نے منتر کیا تھا۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ رؤوس الشیاطین کے ساتھ جو تشبیہ دی گئی ہے وہ اس بنیاد کے اوپر تشبیہ دی گئی ہے کہ عامتاً اس طرح ناپاک جادو کرنے کے اندر शयातीन से मदद ली जाती है और मदद लेकर के जादू किया जाता है। उसको आजकल आमिलों की इस्तिलाह में आसेबी सहर से ताबीर करते हैं। और आसेबी सहर का अंदर ये होता है कि शैतान, खबीस किस्म के शरीर, जिन, उनसे मदद लेकर के किसी के ऊपर जादू किया जावे, उसका नाम रखा जाएगा आसेबी सहर। तो चूंकि उसमें शयातीन से मदद ली गई, इसलिए इस तरह की ताबीर रिवायत के अंदर आई। और बाद हज़रात कहते हैं ये तशबीह मुतलकन बदनुमा और जो है भयानक खतरनाक नजर आने के एतबार से है। जैसे कि हमारे मुहावरे के अंदर भी अगर कोई छोटी लड़की मैली गंदी कुचेली परा गंदा बाल फिरती हो तो लोग क्या कहते हैं, ये क्या भूतड़ी जैसी दिखती है, ये क्या भूतड़ी जैसी फिरती रहती है, ये क्या डाकनी जैसी घूमती रहती है। ऐसा एक मुहावरा है बदनुमा बदशकल को ताबीर करने का। इसलिए ये एक तरह की ताबीर है गलत गंदी भयानक खतरनाक शक्ल सूरत की। फकुल तो हजरत आयशा पूछती है कि आपने उसको निकलवाया नहीं, यानी निकाला नहीं वो जादू के सामान को जो पानी के अंदर था, अंदर जो था उसको निकाला क्यों नहीं। फकौल ला, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, निकालने की ज़रूरत नहीं। अम्मा अन फ़कद शफानी अल्लाह, अल्लाह ताला ने मुझे जादू से शिफा अता फरमा दी, इसीलिए अब उसको निकालने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। व हशी तो मुझे इस बात का डर हुआ, अन युसीर ज़ालिका अलन्नासी शर्रा, ये के लोगों को शर और बुराई के ऊपर कहीं ये मामला न उभारे। यानी अगर वो सब चीज़ें निकाली जाती तो मदीना तय्यबा में कितना चर्चा हो जाता, कितनी शोहरत हो जाती और एक हंगामा खड़ा हो जाता, फितना खड़ा हो जाता है। और उस ज़माने में अभी यहूदियों का गलबा था, दबदबा था, यहूदियों का एक वज़न था और उनका नाम आता तो और ज़्यादा फितना खड़ा हो जाता। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी चीज़ों को निकलवाना मुनासिब नहीं समझा। सुम्मा दुफिनतिल बीरू, फिर कुआं पाट दिया गया, यानी मिट्टी डालकर कुआं हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, पैक कर दिया गया। बस यहाँ पर तो कअन्नहा रुउसुश्शयातीन का लफ्ज रिवायत में आया, ये है तर्जमतुल बाब से रब्त। बाकी कौन शैतान का सर देखने गया कि हम यूँ कहे कि ये चीज भी आई नहीं, शैतान के सर जैसी है। तो इसमें ये भी होता है कि भाई जिस तरह शैतान के सरों को लोग समझते हैं एक डरावनी शक्ल, इस तरह वहाँ एक डरावनी शक्ल सूरत थी कि लोग उसको देखकर डर जावे, घबरा जावे इस तरह के। अब यहाँ हुजूर को वही के जरिए जादू करने वाले का नाम बताया गया, लेकिन हुजूर ने मदीना में किसी को उस वक्त नाम नहीं बतलाया ताकि लोगों के अंदर फितना बरपा न होने पावे। ये हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल एहतियात है, कामिल एहतियात की ये बातें हैं। और आजकल के आमिल लोग कोई जाएगा तो फौरन नाम बतला देंगे कि फुला ने आपके ऊपर जादू किया है, फुला ने करवाया है। और फिर लोग कम ज़र्फ ऐसे हैं कि किसी बापू ने कह दिया तो बस फिर घरों में झगड़े, खानदानों में फितने, ऐसी चीज़ के ऊपर लोग उतर आते हैं। हालांकि ये तरीका सरासर खिलाफ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के ज़रिए बतलाया गया था फिर भी हुजूर ने जादू करने वाले का नाम जाहिर नहीं फरमाया, फितनों से बचने का एहतमाम फरमाया। और अब तो किसी बापू पर वही आती नहीं है। बापू कयास आराइयों से कहते हैं और लोग उसको वही की तरह सही मान लेते हैं, इसीलिए ये तरीका बिल्कुल गलत है। हजरत शाह वलीउल्लाह साहब अल-कौलुल जमील, जिसमें आपने अमलियात जमा किए हैं, तो उसमें एक चोर पकड़ने का अमल भी शाह साहब ने लिखा है अल-कौलुल जमील में, मुझे मालूम है वो पूरा अमल। तो उस अमल को लिखने के बाद शाह साहब ने नीचे एक नोट लिखी है कि इस अमल के जरिए किसी का चोर होना जाहिर होवे तो खारजी कराइन से मजीद तहकीक कर ली जावे। इस अमल से जो चोर का नाम निकले उसको हतमी और यकीनी न समझे। तो हजरत शाह वलीउल्लाह साहब जैसा आदमी अमल लिख करके यूं लिखे कि इससे किसी का नाम जाहिर हो तो उसको हतमी और यकीनी न समझे, बल्कि खारजी कराइन से मालूमात और ताईद कर ले। तो फिर ही आजकल के बापू लबाड़ किस्म के, इनकी नमाजों के भी ठिकाने नहीं और शरीयत में पर्दा बेपर्दगी का भी उनके यहाँ कोई एहतमाम नहीं। वो अगर किसी का नाम बतला देवे तो हम उसको यकीनी मान लेवे और फिर घरों में समाज में झगड़े खड़े कर देवे, बिल्कुल गलत बात है। कोई ऐसा अमल नहीं है कि जिसके जरिए हतमी तौर पर जादू कराने वाले के नाम का पता चल सके। उस आमिल साहब को कहने का कि आप इलाज करो, नाम के लफड़े में मत पड़ो। और लोगों का मिजाज भी ऐसा बन गया कि जो आमिल बेचारा सीधा साधा अमल करने वाला हो, लोग उसकी तरफ ध्यान नहीं देते कि कुछ सवाद नहीं है। लेकिन जो आमिल अधर नाम ठोके और इधर उधर की बातें करे कि आमिल बहुत पहुंचे हुए, हम जैसे गए ने फौरन नाम बतला दिया कि फुलाने ने जादू करवाया है, तो उस पर कोई वही आई थी कि उसने नाम बतला दिया था और उसी की लोग कदर भी करते हैं जी।
أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال أحدهما للآخر ما وجع الرجل؟ قال متروه، قال وين طبه؟ قال لبيد بن الأعصم، قال في ماذا؟ قال في مشط ومشاقة وجف طلعة ذكر، قال فأين هو؟ قال في بئر ذروان، فخرج إليها النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع، فقال لعائشة رضي الله عنها حين رجع نخلها كأنها رؤوس الشياطين، فقلت استخرجته؟ فقال لا، أما أنا فقد شفاني الله، وخشيت أن يثير ذلك على الناس شرا، ثم دفنت البكر.
جي.
وبه قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني أخي عن سليمان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب على كل عقدة كانها عليك ليل طويل فارقده فإن استيقظ فذكر الله إن حلت عقدة فإن توضأ إن حلت عقدة فإن صلى إن حلت عقده كلها فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلانا.
بتلاقي رواية كان غزري अरे जिनको पूछ रहा हो जवाब से कहाँ गुजरी रिवाजे तहज्जुद में। अच्छा है। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु अन्हुम से मनकुल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया शैतान सर के पीछे वाले हिस्से पर या दरमियानी सर के ऊपर जब तुम सोते हो तीन गिरह लगाता है, हर गिरह के ऊपर यूं कहता है अलैक लैलुन तवीलुन फरकुद, बहुत लंबी रात है अभी सोइए, बहुत लंबा वक्त है अभी सोइए, फरकुद सोते रहिए। इस तरह शैतान जो है गुद्दी के ऊपर, सर की गुद्दी पर जब गिरा लगाता है तो उस वक्त के ऊपर शैतान कहते हुए ये गिरा लगाता है। कहने का मतलब कहते हैं कि भाई दिल में वो वसवसा डालता है। फैनिस्तैकज़ा, आदमी बेतार हुआ, दिल में जबान से अल्लाह का जिक्र किया तो एक गिरा खुल जाती है। ये पहली गिरा जो खुल जाती है वो नींद की गफलत वाली गिरा खुल जाती है। फइन तवज़्ज़अ, फिर अगर वुजू कर ले वे तो दूसरी गिरा खुल जाती है, यानी हदसे असगर की गिरा खुल जाती है। फइन सल्ला, और अगर नमाज भी पढ़ ले, तहज्जुद का माना लेना बेहतर है, अगरचे फजर की सुन्नत भी मुराद हो सकती है, और नमाज पढ़ ले वे तो तमाम गिरहें खुल जाती है। सुस्ती की गिरा भी खुल जाएगी और जो है काहिली की गिरा भी खुल जाएगी और हदस की गिरा भी खुल जाएगी। फअसबह नशीता, चुस्ती की हालत में सुबह करता है, एकदम फ्रेश मूड, तय्यबन नफ्सी, खुश मिजाज। नशीत, खुश मिजाजी की हालत के अंदर वो सुबह करता है। व इल्ला, और अगर तीन काम में से कोई काम नहीं करता, यानी उठते हुए दुआ नहीं पढ़ता, जिक्र नहीं करता, वुजू नहीं करता, नमाज नहीं पढ़ता, और जो है नमाज कजा कर देता है, तो खबीसु नफ्स यानी के बदमिजाजी की हालत में सुबह करता है, कसलान एकदम सुस्तड़ सुस्तड़ रहता है। बस यहां पर तो ये आया कि शैतान गुद्दी के ऊपर तीन घेरा लगाता है। बहरहाल सोकर उठते वक्त पर दुआ पढ़नी चाहिए, वुजू कर लेना चाहिए, दो रकात नमाज पढ़ लेनी चाहिए, तो आदमी चुस्त हो जाता है। चाय से नहीं होता चुस्त, इन तीन अमल से चुस्त हुआ करता है। चलो।
وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل عن عبد الله رضي الله تعالى عنه انه قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم حتى اصبح قال ذاك رجل بال الشيطان في اذنيه او قال في اذنيه
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تذکرہ کیا گیا ایک شخص کا کہ وہ رات بھر سویا نے صبح تک سوچ سو کیا اس نے، حتی اصبح یعنی کہ تہجد بھی گئی نے فجر کی نماز بھی گئی، अखी रात सो सो किया उसने यानी सोया ही रहा पूरी रात। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये वो आदमी है जिसके दोनों कान में, या यूं फरमाया जिसके कान के अंदर शैतान ने पेशाब कर दिया। जो आदमी पूरी रात सोया पड़ा रहे, तहज्जुद फजर न पड़े, गोया शैतान ने उसके कान में पेशाब कर दिया। क्या मतलब शैतान कान में पेशाब करे? नंबर एक, हकीकत हाल शारे आला नबी शारे जानते हैं, हमें इसकी हकीकत का पता नहीं। नंबर दो, बाद शुर्राह ने हकीकत पर महमूल किया है कि हकीकत के अंदर शैतान कान में पेशाब करता है, इसीलिए कि शैतान का खाना, शैतान का पीना, शैतान का कह करना, शैतान का हवा जोर से खारिज करना, ये सब चीज़ें मुतअद्दद रिवायतों से साबित है, मुख्तलिफ रिवायतों से साबित है। इसीलिए अगर पेशाब करना भी मान लेवे तो उसमें भी कोई बाईद बात नहीं है। नंबर तीन, शैतान का पेशाब करना ये ताबीर है कि उसके कान में पेशाब भरा गया, शैतान का घुस गया, इसीलिए उसने मौज़िन की अजान नहीं सुनी। जैसे कि भाई कान में पानी घुस जावे तो कान जो है जल्दी सुनते नहीं है, तो कहा तेरे कान में शैतान ने मुत दिया, इसीलिए अब तू है जल्दी मौज़िन की अजान नहीं सुनी और गफलत में सोया पड़ा रहा और नमाज तूने नहीं पढ़ी, इसकी ये ताबीर है। नंबर चार, शैतान ने कलाम बातिल से उसके कानों को भर दिया, कलाम बातिल से उसके कान को भर दिया। कलाम बातिल गोया के एक तरह का हदस, और उसकी वजह से सच्ची दावत अजान की वो सुनने से उसके कान बोझल हो गए और जो है वो गाफिल पड़ा रहा। नंबर पांच, नमाज की इहानत और नमाज की तकफीफ से ये किनाया है कि इसको नमाज की कोई परवाह ही नहीं, नमाज को ये गैर अहम समझता है, कोई अहमियत नहीं देता ये शख्स नमाज को, इससे ये लफ्ज किनाया है। उसको ताबीर किया, जाकर जुलुन बाल शैतान फी उज़ुनैही, ये आदमी है कि शैतान ने उसके दोनों कानों में, या यूं कहा कि एक कान के अंदर पेशाब कर दिया। जी हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा वान्हुम वान्ना जमीआ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई आदमी अपनी बीवी के साथ जिमा के लिए आवे तो ये दुआ पढ़ लेवे, यानी कपड़े उतारने से पहले, जिमा शुरू करने से पहले, सतर खोलने से पहले ये दुआ पढ़ ले, बिस्मिल्लाह, अल्लाहुम्मा जन्निबना शैतान, ए अल्लाह हमको शैतान से बचा लीजिए, वजन्निबिश शैतान मा रज़क़तना, और जो आपने हमको रिस्क दिया उसको भी शैतान से बचा लीजिए। मा रज़क़तना में एक तो औलाद मुराद है कि औलाद नाम की जो नेमत आप इस जिमा की बरकत से देंगे उसको भी अल्लाह आप शैतान से बचा करके रखिए, और नफ्से हमारे जिमा को भी शैतानी शरारत से बचा बचा करके रखिए। इसलिए कि अगर आदमी ये दुआ न पढ़े और जिमा करे तो शैतान जकर से लिपट जाता है और लिपट करके जिमा में शामिल होता है और वो भी लुत्फ अंदोज होता है, और शैतानी असर फिर मनी के साथ औरत की रहम में जाता है, तो मुस्तकबिल में होने वाली औलाद के ऊपर उसका बुरा असर पड़ता है। इसीलिए अगर ये दुआ पढ़ेंगे तो शैतान जकर पर लिपटेगा नहीं, शैतान का गंदा असर मनी के साथ रहम में जाएगा नहीं, और फरूजी का वलदन, अगर उस जिमा की बरकत से वलद अगर दिया गया, इस्तिकरार हमल हुआ, लम यदुर रूहु शैतान हो, तो शैतान उस बच्चे को जरर नहीं पहुंचा पाएगा। यानी विलादत के वक्त के ऊपर शैतान जो बच्चे के अंदर शरारत करता है उससे अल्लाह ताला हिफाजत कर लेंगे। और बाज़ लोग कहते हैं कि इंसान जो खबीसु नफ्स बन जाता है वो शर शैतान का औलाद के ऊपर शामिल होता नहीं है, इसीलिए ये दुआ पढ़ लेना बहुत ज़रूरी, वरना बगैर दुआ पढ़े तो फिर शैतानी असरात जिमा में और औलाद में शामिल हो जाते हैं और औलाद के अखलाक पर, गंदे मिजाज पर उसका असर होता है। इसलिए बाज जगहों के ऊपर एक तंबीही जुमला है कि कोई बहुत शरारत करता हो तो उसको यूं कहते हैं, अबे ओ बे बिस्मिल्ला के, इस तरीके के। चलो
قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تبرز وإذا غاب حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تغيب ولا تحينوا بصلاة من طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بين قرني الشيطان أو الشيطان لا أدري أي ذلك قال هشام
बस ये रिवायत में चूंकि शैतान का उसमें शामिल होने का तस्किरा आया कि शैतान भी इस तरह शामिल हो जाता है, ये तरजमतुल बाब से मरबूत है। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा वअन्हुम वअन्ना जमीआ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब सूरज का एक किनारा भी निकल आवे तो तुम नमाज पढ़ना छोड़ दो, यानी तुलू आफ्ताब के वक्त पर एक किनारा भी निकला तो तुम अब फजर की नमाज पढ़ना छोड़ दो। हत्ता तब रूजा, यहां तक के सूरज पूरा जाहिर हो जावे यानी मुकम्मल तुलू हो जावे और बुलंद हो जावे, तब जाके नमाज पढ़ना, वहां तक तुम नमाज मत पढ़ना। व इजा गाबा हाजिबु शमसी, और जब सूरज का एक किनारा डूब जावे, गायब हो जावे उफू के मगरिब में, फदा उस सला, तो तुम नमाज पढ़ना छोड़ दो। हत्ता तगीबा, यहां तक के पूरे पूरा सूरज डूब जावे, तब जाके मगरिब की नमाज अदा करो। वला तहय्यनु बिसलातिकुम, और तुम नमाज न पढ़ो या नमाज पढ़ने का इरादा भी मत करो, तुलुए शम्स के वक्त और गुरुबे शम्स के वक्त पर, इसलिए कि शैतान के दो सींग के दरमियान में सूरज तुलू होता है। करनई शैतानिन, शैतान के दो सींग के दरमियान, अल्लाह हू अकबर अल्लाह हू अकबर, फ इन्नहा तत्लु, सूरज तुलू होता है शैतान के दो सींग के बीच में, या शैतान यानी मौर्रब बिल्लाम कहा या गैर मौर्रब बिल्लाम कहा, ला अदरी अय्यज़ाली का कौल हिशाम। दरअसल इस मौके पर शैतान सूरज के करीब पहुंच जाता है, अपने दो सींग वहां पर लगा देता है। ऐसा मंजर मालूम होता है कि शैतान के दो सींग के बीच में सूरज तुलू हो रहा है, शैतान के दो सींग के बीच में शैतान सूरज गुरूब हो रहा है, ऐसा मंजर मालूम होता है। हकीकत तो नहीं होती है, ये ऐसा ही होता है कि जैसे हमारे मुहावरे में ये कहते हैं कि कुत्ता बैलगाड़े के नीचे चलता हो तो कुत्ता ये समझता है कि पूरा गाड़ा मैं ही खींच रहा हूँ। इस तरह शैतान जाकर के अपने सींग वहाँ खड़े कर देता है तो ये समझता है कि मेरे दो सींग के बीच में सूरज निकल रहा है, वो ऐसा ही तसव्वुर करता है, ऐसा ही वो समझता है। और जो लोग सूरज के पुजारी लोग हैं, जो सूरज के तुलू और गुरूब के वक्त उसकी पूजा करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं और सूरज के सामने हाथ जोड़ करके उसकी बंदगी करते हैं, उनका भी यही वक्त हुआ करता है। इसीलिए शारे ने हमको ऐसे वक्त पर नमाज पढ़ने से मना फरमाया। जी
به قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن حميد بن هلال عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بين يدي أحدكم شيء وهو يصلي فليمنعه فإن أبى فليمنعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان.
حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ وانہم سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کے سامنے سے گزرے، یعنی کوئی نماز پڑھ رہا ہو اور اس کے سامنے سے کوئی گزرے، یعنی نمازی اور سترے کے درمیان سے گزرے، یا نمازی اور مسجد صغیر کے قبلے کی دیوار کے درمیان سے کچھ گزرے، فَلْيَمْنَعْهُ تو اس کو روکے، یہ امر برائے استحباب ہے۔ بعضوں نے امر کو برائے وجوب قرار دیا ہے کہ اس گزرنے والے کو روکنا چاہیے یا روکنا ضروری ہے۔ کیسے روکیں گے؟ ہاتھ کا اشارہ کر کے روکیں گے اس طریقے سے، یا کہ یوں ہاتھ رکھتے ہوئے، یوں کراس میں گزر رہا ہے تو یوں ہاتھ رکھتے ہوئے، اور سامنے سے آ رہا ہے تو یوں کر کے ہاتھ کر دے ہوئے، اس طرح اس کو روک دے ہوئے۔ اسی طریقے سے کھنکھار لے ہوئے تاکہ وہ متنبہ ہو جاوے، عورتوں کے لیے تصفیق ہے کہ وہ اس طرح تصفیق کر کے روکے گزرنے والے کو۔ بہرحال عمل قلیل کے ذریعے سے اس کو روکے، فَإِنْ أَبَى فَلْيَمْنَعْهُ، اگر وہ مانتا نہیں اور گزرنے ہی کے چکر میں رہتا ہے تو اس کو روکے پھر سے، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، اور اگر پھر بھی وہ نہیں مانتا اور گزرنے ہی کے چکر میں ہے تو اس کو پوری طاقت سے روکے۔ فَلْيُقَاتِلْهُ کے معنی پوری طاقت سے روکے، الجھ کر کے روکے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چالو نماز میں مارا ماری چالو کر دے رہے، فل یقاتلہ کا یہ مطلب مت لینا کہ بھئی وہ گزرنے والا رکتا نہیں ہے تو نماز میں ڈسم ڈسم چالو کر دے رہے، ایسا نہیں ہے یہ مطلب اس کا۔ بعض شرح نے اس کو اس پر محمول کیا ہے کہ جس وقت نماز کے اندر عمل ممنوع نہیں تھا، یہ اس زمانے کی بات ہے، باقی جب عمل نماز میں ممنوع ہو گیا تو پھر اب یہ حکم باقی نہیں رہے گا۔ اور فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَان، یہ گزرنے والا شیطان ہے، حدیث میں یہ لفظ آیا اس لیے شیطان کے باب میں یہ روایت امام بخاری لے آئے۔ یعنی شیطان ہونے کا مطلب کیا ہے؟ نمبر ایک، وہ شیطان جیسا عمل کر رہا ہے۔ دوسرا مطلب، شیطان نمازی کے آگے سے گزرنے پر ابھار رہا ہے. تیسرا مطلب, وہ انسانوں میں سے شیطان کا فرد ہے. یہ تینوں مطلب لیے جائیں گے. فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ کے, دیکھیے میں نے عربوں کو دیکھا مسجد نبوی کے اندر کہ وہ لوگ نماز پڑھتے ہوتے ہیں, کوئی گزرنے جاوے تو اس انداز سے وہ روکتے ہیں کہ عمل کثیر بھی نہ ہو اور جو ہے فل یقاتلہ بھی ہو جاوے, یعنی یہ ہاتھ کر کے باندھے تھے یوں کر کے ایک جھٹکا دیں گے وہ, تو اس سے وہ گزرنے والا اپنا انڈین بیگن آلو والا وہ تو گر جاوے نیچے, وہ تو گرت پڑے. اس طرح وہ یوں ہاتھ ٹیک دیتے ہیں مضبوطی کے ساتھ. تو اس طرح جو ہے شدت کے ساتھ روکنا چاہیے. اس سلسلے کے اندر مسئلہ یہ ذہن کے اندر رکھے کہ مسجد صغیر ہو تو نمازی اور دیوار کے درمیان سے گزرنا نہیں چاہیے, قبلے والی دیوار. سترا ہو تو نمازی اور سترے کے بیچ سے گزرنا نہیں چاہیے. مسجد کبیر ہو تو اس صورت کے اندر ایک صف نمازی کی اور اس کے آگے والی ایک صف, یہ دو صف سے نہ گزریں, اس کے علاوہ آگے سے گزر سکتے ہیں مسجد کبیر کے اندر. آپ نے اس کے لیے کتب فقہ میں یوں لفظ پڑھا کہ اگر نمازی اپنا دھیان سجدے کی جگہ کے اوپر ٹکاوے تو کتنے آگے سے گزرنے والے پر نظر نہیں پڑے گی, اتنے آگے سے گزر سکتے ہیں, اور اتنا نمازی کی اپنی صف اور آگے والی ایک صف ہے, بس اتنی مقدار کافی ہے. تو اتنے آگے سے اگر کوئی گزر جاتے ہو مسجد کبیر کے اندر تو اس صورت کے اندر وہ گزر سکتا ہے. صحرا کا بھی یہی حکم ہے, یعنی جنگل میں کھلے میدان کے اندر کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو کم از کم اس کی نظر جاوے ایسی جگہ سے نہ گزرے, یعنی خود اس کی موضع سجدہ اور اس کے بعد آگے مزید ایک صف اس سے نہیں گزرنا چاہیے. جی.
حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنه قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في زكاه رمضان فاتاني اتي فجعل ياخذ من الطعام فاقلت فقلت لارفعنك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اذا اويت الى فراشك فاقرا ايه الكرسي لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم
یہ بہت لمبی روایت ہے کتاب الوکال میں, یہاں راوی نے بہت اختصار کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی زکوٰۃ کی نگرانی پر مجھے مقرر فرمایا, یعنی زکوٰۃ صدقے کا مال آیا ہوا تھا تو وہاں نگرانی کے لیے حضور نے مجھے مقرر فرمایا. اتنے میں رات کو ایک چور آیا اور گلہ بھر کے لے کر بھاگنے لگا, تو میں نے اس چور کو پکڑ لیا اور چور کو یوں کہا, میں ضرور بے ضرور صبح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤں گا. پھر آگے پوری حدیث ہے. وہ چور نے منت و سماجت کی, ابو ہریرہ غریب آدمی ہوں, بچے بہت ہے, تم مجھے چھوڑ دو, آئندہ میں نہیں آؤں گا. حضرت ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا. صبح میں وحی کے ذریعے حضور کو اطلاع ہو چکی تھی. حضرت ابو ہریرہ کو پوچھا, ابو ہریرہ اور رات کو تمہارے چور نے کیا کیا؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے بتلایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج رات بھی وہ آئے گا. تو حضرت ابو ہریرہ کہتے مجھے یقین ہو گیا تھا کہ آئے گا. پھر دوسری رات بھی آیا, پھر دوسری رات بھی پکڑ لیا, تو اس نے منت و سماجت کی تو چھوڑ دیا. تین رات ایسا ہوا تھا کہ وہ آتا رہا, حضرت ابو ہریرہ اس کو چھوڑتے رہے اس کی منت و سماجت پر کہ میں غریب آدمی ہوں, بچے بہت ہے, مجبوری میں چوری کرنے آیا تھا, آئندہ کبھی نہیں آؤں گا, ابو ہریرہ چھوڑ دو. چھوڑ دیتے تھے, دوسری رات آتا پھر چھوڑ دیتے, پھر تیسری رات, اور تینوں دن صبح میں حضور نے یہی فرمایا تھا کہ ابو ہریرہ तुमने छोड़ा है लेकिन वो फिर आएगा। अब तीसरी रात क्या हुआ? फकाला, उसने कहा अबू हुरैरा, आज तो अबू हुरैरा ने अज़्म किया था छोड़ना ही नहीं है उसको, हुजूर के पास ले जाके ही रहूंगा। तो वो चोर क्या कहता है, मैं तुमको एक बात बता के जाता हूँ, छोड़ दो ना, एक काम की बात बता दूं। और क्या बात बताई? रात को जब तू बिस्तर पर सोने के लिए आओ तो आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो, अल्लाह की तरफ से एक हिफाजत करने वाला आएगा जो पूरी रात तुम्हारे घर की हिफाजत करेगा और शैतान सुबह तक तेरे करीब नहीं आएगा। ये बात उसने सिखाई चोर ने कि रात को आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो, चोर ने ये बात सिखाई। अब तीसरे दिन हजरत अबू हुरैरा ने आके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा तो हुजूर ने फरमाया, अबू हुरैरा ये तीन दिन से आने वाला कौन चोर है तुम्हें मालूम है? तो कहा नहीं मुझे नहीं मालूम। तो कहा वो शैतान था, शैतान जो इंसानी शक्ल में चोरी करने के लिए आता था। सदका का वहु कजूबुन, उन्होंने तुमसे सच्ची बात कही कि जो भी रात को आयतुल कुर्सी पढ़ ले तो अल्लाह की तरफ से एक मुहाफिज आ जाता है। हालांकि झूठ बोलने में सबसे आगे है वो, लेकिन आज वो तुमको सच बात बतला कर गया, इसीलिए आयतुल कुर्सी हमारे लिए हुज्जत हो गई कि भाई हुजूर ने इसकी तस्दीक फरमा ली। जाका शैतानुन, इसीलिए रात को सोते वक्त आयतुल कुर्सी का मामूल बना लो भाई।